कुछ देर बाद तीनों बाहर पहुंचे। ठीक उसी वक्त पल्लवी भी वहां पहुंची। हल्का सांवला रंग और आकर्षक नयन नक्श, नारंगी सूट पर कंधे पर साइड से दुपट्टा डाले और कंधे से जरा नीचे तक के गीले बालों को क्लिप लगाकर खुला छोड़े, सादे रूप में भी बहुत प्यारी लग रही थी वो। दृशांत की निगाहें उस पर ठहर सी गईं, जबकि पल्लवी ने एक उड़ती नज़र उस पर डाली और फिर अंतरा और आहना की ओर बढ़ गई। हेलो भाभी जान, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, अंतरा उसके आते ही शुरू हो गई। जवाब में पल्लवी ने प्यार से इसके गाल को खींचा। परसों ही मिली थी नौटंकी। अंतरा ने खिसियानी हंसी हंसते हुए बात छुपाई, फिर तिरछी नज़रों से दृशांत को घूरते हुए बोली, भाभी जान, आपको भी सारी दुनिया में यही अकड़ू और खड़ूस शख्स मिला था प्यार के पेंच लड़ाने के लिए? अंतरा, दृशांत ने सख्ती से उसे टोका, जिस पर अंतरा ने निर्भीकता से उसे घूरा, वहीं पल्लवी ने तिरछी नज़रों से दृशांत को देखते हुए जवाब दिया, अंतरा, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अब दिल आया लंगूर पर तो हूर भी क्या चीज़ है। वाह, खड़े खड़े क्या बेइज्जती की थी मोहतरमा ने। वो जनाब अंदर तक सुलग रहे थे और रही सही कसर अंतरा मैडम ने पूरी कर दी। कहावत तो ठीक से पढ़िए भाभी जान, तो अर्ज किया है, जब दिल आया लंगूर पर तो अंगूर क्या चीज़ है। अंतरा ने भी जमकर उसकी टांग खींची और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बेचारी आहना कभी इन दोनों को देखती तो कभी अपने भाई के गुस्से से तमतमाते चेहरे को। अभी दोनों नंद भाभी की जोड़ी कहकहे लगाने में व्यस्त थी, तभी दृशांत की कठोर आवाज़ उनके कानों में पड़ी। चलना है या नहीं? बर्बाद करने को फालतू वक्त नहीं मेरे पास। जल्दी से अंदर बैठो, वरना दोनों को यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, उसने साफ शब्दों में धमकी दी और इसका असर जल्दी ही देखने को मिला। अंतरा और पल्लवी हंसते हंसते रुक गईं और अगले ही पल अंदर घुसकर बैठ गईं। दृशांत ने अफसोस से सर हिलाया और आंखों से आहना को कुछ इशारा करते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आहना पैसेंजर सीट पर बैठी और कार आगे बढ़ गई। सारे रास्ते पीछे बैठी अंतरा और पल्लवी की उल्टी सीधी बातें और हंसी मजाक चलता ही रहा, जिसमें बीच बीच में आहना भी शामिल हो जाती। इस वक्त अभी कोई उन तीनों को देखता तो पल्लवी को आहना की नहीं अंतरा की दोस्त समझता। दोनों एक जैसे नेचर की थीं और खूब पटती थी उनकी आपस में, और जब दोनों इकट्ठी होती तो दृशांत को छेड़े बिना बाज नहीं आती थीं। दृशांत का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था और शांत गंभीर चेहरा, पर अगर गौर से ध्यान दिया जाए तो मालूम चले कि जनाब की निगाहें फ्रंट मिरर में कई दफ़ा पीछे बैठी पल्लवी को निहार चुकी थीं, और जब जब उसकी खिलखिलाती हंसी दृशांत के कानों में पड़ती उसके चेहरे के भाव कुछ बदलते, साथ ही होंठ भी किनारे से मुड़ जाते। खैर, रास्ता कटा। सबसे पहले अंतरा को उसके कॉलेज ड्रॉप किया गया, फिर कार आहना और पल्लवी के स्कूल के बाहर रुकी। पल्लवी गेट खोल ही रही थी कि दृशांत की गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकराई, तुम रुको, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। उसकी बात सुनकर आहना और पल्लवी दोनों ही गेट खोलते खोलते ठिठक गए और हैरानगी से उसे देखने लगी, पर दृशांत का रुख पल्लवी की तरफ था। एक नज़र पल्लवी को देखने के बाद उसने आहना की ओर रुख फेरा। आहना, तुम अंदर जाओ, पल्लवी 5 मिनट में आ जाएगी। जी भैया, आज्ञाकारी बच्चे जैसे सर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकल गई। अब वहां सिर्फ दृशांत और पल्लवी ही रह गए थे। पल्लवी ने बेचैनी से निगाहें घुमाई और घबराई हुई सी अपने पर्स की बत्ती पर मुट्ठी कसके हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगी, आ गई तेरी शामत, चढ़ गई हिटलर के हत्थे, अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं। पल्लवी की बच्ची, आज तो तू गई काम से, आज तो खैर नहीं तेरी, जैसे तूने उसे छेड़ा है ना, आज ये जल्लाद तुझे छोड़ेगा नहीं। बेचारी पल्लवी आगे की अपनी दुर्दशा सोचते हुए खुद को ही कोसने में लगी थी, जब एक सधी हुई धीमी पर सख्त आवाज़ बड़े करीब से आई, क्या बोल रही थी तुम अंतरा से? आवाज़ सुनकर पल्लवी चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई, निगाहें आवाज़ की दिशा में घुमाई और अपने बगल में दृशांत को बैठा देखकर घबराकर पीछे हट गई। कुछ भी तो नहीं बोल रही, घबराहट के मारे उसकी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे अटकी थीं और जुबान भी लड़खड़ा गई थी। कुछ कैसे नहीं बोल रही थी? बोल तो तुम रही थी और खूब हंसी भी आ रही थी तुम्हें। उसके रुख पर गुस्सा और नाराज़गी साफ छलक रही थी और घूरती निगाहें उस पर ही टिकी थीं। पल्लवी की जान हलक में अटकी थी, सो उसने तुरंत ही हड़बड़ी में इनकार में सर हिलाया, पर दृशांत फिर तीखी नज़रों से उसे घूरने लगा। लंगूर? हाँ, यही कहा था ना तुमने मुझे? दृशांत ने उसे उसकी कही बात याद दिलाई और पल्लवी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए अपनी आंखों को कसके भींच लिया, जैसे अब कहने सुनने को उसके पास कुछ रह ही ना गया हो। दृशांत ने चेहरे पर सख्त भाव लिए अपने सामने बैठी इस घबराई हुई खुद में सिमटी बैठी लड़की को कुछ पल घूरा, जो बाकी सबके सामने तो शेरनी बनकर दहाड़ती है पर अकेले में उसके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाती है। ये सोचते हुए दृशांत के भाव कुछ कोमल हो गए। मेरे मैसेजेस और कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? सवाल सुनते ही पल्लवी ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। पहले तो वो बड़ी बड़ी आंखों से हैरानगी से उसे देखती रही कि कैसे उसने टॉपिक चेंज किया, फिर अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने मुंह बनाते हुए अकड़ते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरा आपसे बात करने का कोई मन नहीं। और वो क्यों भला? दृशांत की आंखें गहरी हुई पर पल्लवी ने बड़ी ही लापरवाही से कंधे उचका दिए। मुझे क्या पता, बस नहीं है मन तो नहीं है। बात करने का मन नहीं या उस दिन पूछे मेरे सवाल का जवाब देने से बचने के लिए मुझे इग्नोर कर रही हो। गंभीरता से किया सीधा सपाट सवाल, जिसे सुनकर पल्लवी उससे नजरें चुरा गई। कैसा सवाल? मुझे तो कुछ याद नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। पल्लवी ने हड़बड़ी में बात खत्म की और दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया ही था कि दृशान ने उसकी कलाई को सख्ती से थाम लिया। पल्लवी की सांसें पल भर को थम गई और वो तुरंत ही अपना हाथ उससे छुड़ाने लगी। हाथ छोड़िए मेरा। क्यों छोड़ू, हक है मेरा, दृशान ने गंभीरता से जवाब देते हुए अपनी पकड़ कस दी। पल्लवी जो उससे अपनी कलाई आजाद करवाने की हर संभव कोशिश करके थक चुकी थी, उसका जवाब सुनकर खींच उठी। नहीं है हक, भूलिए मत, अभी शादी नहीं हुई है हमारी, और अगर आपने मुझे अभी यहाँ से जाने नहीं दिया और परेशान किया तो शादी कभी होगी भी नहीं। अच्छा, और कौन रोकेगा हमारी शादी होने से? रेशान ने भौंच काते हुए सवाल किया, जिस पर पल्लवी ने उसे आंखें दिखाते हुए जवाब दिया, मैं रोकूंगी। मेरे लिए मम्मी पापा राजी हुए थे, अगर मैंने इनकार किया तो वो ये रिश्ता यहीं खत्म कर देंगे। लगभग धमकाने वाला अंदाज था जो दृशांत को खासा पसंद आया। उसकी बेबाकी पर ही तो दिल हारा था, पर ये मोहतरमा तो उसके आगे एकदम डरपोक बन जाती थी, सो उसके इस रूप के दीदार के लिए उसे थोड़ा सताना और भड़काना पड़ता था। पल्लवी की धमकी सुनकर दृशांत ने एक बार फिर भौंच काते हुए सवाल किया, अच्छा तो तुम इनकार करोगी? हाँ बिल्कुल, पल्लवी ने नजरों से नजरें मिलाते हुए जवाब दिया और अपनी बात पर डटी रही। सोचा था बात यहीं खत्म हो जाएगी, पर दृशांत उससे कहीं गुना ज्यादा चालाक था और बहुत आगे की सोचता था। उसने उसकी इस धमकी को हवा में उड़ाते हुए बेफिक्री से कहा, ठीक है तो अपना ये शौक शौक से पूरा करना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि दोस्त का भाई तो भाई होता है, फिर मुझे अपने भैया की जगह सैया बनाने का ख्याल कब और कैसे आ गया तुम्हारे मन में, जैसे आपके मन में अपनी छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड को अपनी वाइफ बनाने का ख्याल आया। पल्लवी ने तड़क कर जवाब दिया, जब से रिश्ता हुआ था दृशांत अक्सर ये सवाल करके उसे छेड़ता और आखिर में तंग आकर आज पल्लवी ने पलटवार कर ही दिया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, सच सच बताओ तुमने कभी मुझे भैया क्यों नहीं कहा और मेरे लिए तुम्हारे दिल में ऐसी वाली फीलिंग्स कब से हैं?
नहीं बताती, क्या करेंगे आप? और क्यों कहती मैं आपको भैया? भैया लगेंगे आप मेरे, और भैया वाली हरकतें थी आपकी, जब मौका मिलता बस मुझे परेशान करते, डांट लगाते और मैं भैया कहती आपको, बहुत ऊंचा ख्वाब देख लिया आपने तो। पल्लवी ने तुनकते हुए अपनी बात पूरी की, फिर मुंह बनाते हुए चेहरा फेर लिया। जब इतना ही बुरा लगता था मैं तो अपने दिल में कैसे बसा लिया मुझे? एक बार फिर दृशांत ने उसे छेड़ा और मैडम खींचते हुए बोल पड़ी, बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपकी अच्छाइयां देखकर आपसे दिल लगा लिया, बड़ी पछता रही हूँ अब। फिर तो अब तुम्हें सारी उम्र पछताना ही पड़ेगा। उसकी हथेली को सहलाते हुए दृशांत मुस्कुराया, वहीं पल्लवी मुंह फुलाकर बैठ गई। इतना डरती क्यों हो मुझसे? खाने बैठा हूँ तुम्हें। कुछ पल की खामोशी के बाद दृशांत ने सवाल किया, जिस पर पल्लवी चिढ़ते हुए तपाक से बोल पड़ी, आप हमेशा हिटलर बने क्यों घूमते हैं? जब देखो बस डांटते ही रहते हैं, मुझे क्या किसी को भी डर ही लगेगा आपसे? पल्लवी का इल्ज़ाम सुनकर दृशांत गंभीर हो गया, अपनी हरकतें ना देखा करो तुम, बेवजह ही डांटने का शौक नहीं चला है मुझे, हरकतें ऐसी करती हो तो डांट भी पड़ेगी। अच्छा, और ऐसी कौन सी डांट खाने वाली हरकतें करती हूँ मैं? दिलचस्पी दिखाते हुए पल्लवी ने तुनकते हुए सवाल किया। दृशांत ने भी उसी की निगाहों से निगाहें मिलाते हुए उसी के लहजे में उसी से सवाल कर लिया, मेरी छोटी बहन के साथ मिलकर मेरे ही सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाया था? वो तो बस मजाक था, पल्लवी ने तुरंत ही सफाई पेश करते हुए अपना पल्ला झाड़ा, पर दृशांत गंभीर था, पर मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं क्या करूं, ना आए पसंद, मैंने ठेका थोड़ी ना लिया है आपकी पसंद की बातें करने का, पल्लवी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। दृशांत कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर संजीदगी से बोला, उसका सपोर्ट मत किया करो, पहले ही बिगड़ी हुई है, शय मिलने कर और उल्टी सीधी हरकतें करती है और उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, बिगड़ी नहीं है बस थोड़ी मनमौजी और शैतान है। एक अच्छी भाभी जैसे पल्लवी ने तुरंत ही अंतरा की तरफदारी की, पढ़ाई से जी चुराती है, दृशांत ने शिकायत की। बदले में पल्लवी ने आंखें छोटी छोटी कर उसे घूरते हुए जवाब दिया, दुनिया में हर कोई आपकी तरह किताबों का कीड़ा नहीं होता, उसका इंटरेस्ट मेकअप और फैशन में है, तो उसी में कुछ कर ले, पर कुछ तो करे, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहती, बस अपने दोस्तों संग आवारागर्दी करती है और वक्त के साथ पैसे बर्बाद करती है। कर लेगी वक्त आने पर, अभी तो ऐश मौज करने की उम्र है, अभी से जिम्मेदारियों का बोझ डाल देंगे उसके कंधे पर तो उसका बचपना खो जाएगा और आपके तरह वक्त से पहले सीनियर सिटीजन बन जाएगी। एक बार फिर पल्लवी ने जाने अनजाने उस पर तंज किया और दृशांत की भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी, चलना तो पैर भी चाहते हैं पर आप जानेगी तब ना, हाथ पकड़े बैठे हैं, जवाब तुरंत ही हाजिर था और तीखी नजरें उसके हाथ को घूरने लगी थीं जिसने उसकी कलाई थामी हुई थी। दृशांत ने अब उसकी कलाई छोड़ दी, पल्लवी ने तुरंत हाथ पीछे खींचा और अपनी कलाई सहलाने लगी। अच्छा सुनो, दृशांत की आवाज़ पर उसने सर घुमाकर उसे देखा, जी कहिए। दृशांत के चेहरे पर अब गंभीर भाव मौजूद थे, कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे। कहिए, सुन रही हूँ मैं। वो मैंने बताया था ना, आज आहाना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। जी,
हमारे सामने तो वो कुछ कहती नहीं है, बस साला फैसला हम पर छोड़ देती है, अपने दिल की बात अंदर ही रखती है। तो एक बार तुम उससे बात करके देखो, जानो कि उसके मन में क्या है और वो क्या चाहती है। कोशिश करती हूँ, पर मैं सोच रही थी कि पहले लड़का देख लेती, उससे बात कर लेती, उसके बाद मैं उससे पूछती, तब उसके लिए जवाब देना ज्यादा आसान होता। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो, बस मुझे उसकी मर्जी बता देना। मैं नहीं चाहता कि हमारे खातिर वो किसी अनचाहे बंधन में बन जाए। जी, मैं बात करके बताती हूँ आपको। अब जाऊँ क्या? कुछ और कहना है आपको? जाओ। दुशांत ने उसे जाने की इजाज़त दी तो पल्लवी तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी, पर फिर कुछ सोचकर रुकी। पलटकर दुशांत को देखा, जो उसे ही देख रहा था, और सौम्य सी मुस्कान लबों पर दिखेरते हुए बोली, लंगूर है पर मुझे बड़े पसंद हैं। इतना कहकर वो खिलखिलाते हुए बाहर निकल गई, पर पीछे छोड़ गई दुशांत के लबों पर दिलकश मुस्कान।